हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सो गई आकृति? धृति ने कमरे में कदम रखते हुए अर्णव से सवाल किया। आवाज मत करो, जाग जाएगी। अर्णव धीरे से फुसफुसाया और अपनी डॉल को अपनी बाहों में थामे, सीने से लगाए हल्के हल्के थपकी देने लगा। धृति उसे देखकर मुस्कुराई, फिर दबे पांव बाथरूम में चली गई। जब वापस कमरे में आई तो अर्णव बेड पर आकृति के पास लेटा उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था, और वो नन्ही परी करवट लेकर अपने डैड के सीने से लिपटी हुई थी। ज्यादा परेशान तो नहीं किया इसने आपको? धृति ने आकृति के दूसरी तरफ लेटते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर अर्णव ने निगाहें उठाकर शिकायती लहजे में जवाब दिया। नहीं, उसने तो परेशान नहीं किया, पर तुम बहुत परेशान करती हो मुझे। अर्णव ने नाराजगी भरी निगाहें धृति पर डाली। धृति उसकी बात सुनकर चौंक गई। अब मैंने क्या किया? आश्चर्य से आंखें फैलाई वो अर्णव को देखने लगी। अब तक बाहर लॉन में क्यों बैठी थी? जानती हूं ना तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी अभी। अर्णव ने जरा सख्ती दिखाई और नाराजगी अब भी जस की तस बनी हुई थी, पर अब इस नाराजगी में भी धृति के लिए उसकी मोहब्बत और फिक्र झलकने लगी थी, जिसे महसूस करते हुए धृति मुस्कुरा दी। मृणाल से कुछ बात कर रही थी, बहुत वक्त बाद ऐसे साथ बैठकर बात करने का मौका मिला था, उसी में वक्त का एहसास नहीं हुआ, पर अब नाराज मत होइए, मैं ठीक हूं। अर्णव कुछ पल नाराजगी से उसे घूरता रहा, फिर उसने अपनी डॉल को खुद से अलग करते हुए ठीक से लिटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया, और जैसे ही वहां से उठने लगा धृति उसके सामने आ खड़ी हुई। अब तुम क्या कर रही हो? हटो सामने से और जाकर आकृति के पास लेटो, अर्णव ने उखड़े स्वर में कहा, और फिर उठने को हुआ कि धृति उसकी गोद में बैठ गई और झट से अपनी गोरी पतली बाहों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए इठलाने लगी। नहीं, अभी मुझे बेटी नहीं उसके बाप के साथ वक्त बिताना है। अर्णव भौंसे घोड़े तीखी निगाहों से उसे घूरने लगा। नाराज अब भी था, पर धृति की फिक्र भी थी उसे। उसकी कमर को पकड़ते हुए उसने धृति को मजबूती से थाम लिया था। क्या कर रही हो तुम ये? अपने रूठे हुए पतिदेव को मनाने की कोशिश कर रही हूं, कहते हुए धृति मुस्कुराई और आगे बढ़कर अपने सुर्ख कोमल लबों से बारी बारी उसके दोनों गालों को चूम लिया। अर्णव अब भी चेहरे पर सख्त भाव लिए तीखी निगाहों से उसे घूरने में लगा था। धृति ने अपनी तितली जैसी पलकों को झपकाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसे देखा और अब की बार उसकी लबों को हौले से चूम लिया। इन सब से नहीं मानने वाला आज मैं, उसकी बढ़ती कोशिशें देखकर अर्णव ने सख्त लहजे में ये बात कही और अपनी गर्दन पर लिपटी उसकी बाहों को हटाना चाहा, पर धृति ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया और क्यूट सी शक्ल बनाते हुए मस्का लगाने लगी। कर दीजिए ना माफ, बस थोड़ी देर ही तो बात की थी, रात ही मिली थी तुम्हें बात करने को, अर्णव ने नाराजगी से भौंसे कोड़ते हुए उसे घूरा और जवाब में धृति ने मुंह बिचका लिया। बस यही आता है तुम्हें, पहले गलती करके मुझे नाराज करो, फिर ऐसी शक्लें बनाओ कि दया आ जाए मुझे तुम पर। आ गई आपको मुझ पर दया? माफ किया आपने मुझे? धृति ने फट से सवाल किया। उसके चहकते चेहरे, खनकती आवाज, जुगनुओं से चमकती आंखें और दिलकशी से मुस्कुराते लब, अर्णव चाहकर भी अब उससे नाराज ना हो सका और अफसोस से सर हिलाते हुए हामी भर दी। कामयाब हुई तुम अपनी कोशिशों में, पर इस बार माफ कर रहा हूं, दोबारा तुमने ऐसा किया तो मुझसे माफी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। माफी के साथ मुफ्त में चेतावनी भी मिली थी, जिसे धृति ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। डन, चलो अब उठो मेरे ऊपर से और जाकर अपनी जगह पर लेटो, अर्णव ने फिर उसे खुद से दूर करना चाहा, पर धृति ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मुझे ऐसे ही आपके पास बैठना है और आपसे बात भी करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जो अभी इतनी रात को ही हो सकती है? अर्णव के भौं उछालते हुए गंभीरता से सवाल किया। धृति कुछ पल खामोशी से उसे तकती रही, फिर मीठी सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, थैंक यू। किस लिए? अर्णव ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखते हुए सवाल किया। मेरे छोड़कर जाने के बाद 3 साल मेरा इंतजार करने के लिए, मुझे वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए, मुझे मनाने के लिए इतनी कोशिशें करने के लिए, मेरे इतने बार इनकार के बाद भी हार मानकर मुझ पर से गिव अप नहीं करने के लिए, और मेरी इतनी बेवकूफियों के बावजूद मुझे खुले दिल से अपनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कहूंगी, क्योंकि इस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने भी बहुत कुछ सहा है। अर्णव, जो पहले चेहरे पर संजीदगी की भाव लिए उसकी बात सुन रहा था, उसकी आखिरी की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। अच्छा, फिर तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, फिर भी तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरी जिंदगी में आकर उसे खुशियों से भर दिया, मेरे परिवार को पूरा किया और अब मुझे इतनी क्यूट सी बेटी भी दी। पर जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूंगा। पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें हमेशा इतनी ही मोहब्बत करूंगा और तुम्हारे लिए एक बेहतर हस्बैंड के साथ अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन डैड बनूंगा। वो तो आप अभी से हैं, धृति ने खनकते स्वर में कहा, तो उसकी बात सुनकर अर्णव भी मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से धृति के माथे को चूम लिया और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया। धृति कुछ पल लबों पर गहरी मुस्कान सजाए एकटक उसे देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें मूंद ली और दोनों महसूस करने लगे एक दूसरे की करीबियों में बसे सुकून को, एक दूसरे की मोहब्बत में बसे करार को। ओए मेरी स्वीटू, तुझे क्या हो गया, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है, कबीर ने माधुरी के पास बैठते हुए उसे प्यार से पुचकारा। माधुरी, जो बेड से टेक लगाए हाथ बांधे मुंह फुलाए बैठी थी, शायद रूठी हुई थी। उसने खफा खफा निगाहों से कबीर को देखा और तुनकते हुए बोली, मैं गुस्सा हूं तुमसे। कबीर ने उसकी बात सुनकर आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए हैरानी जाहिर की और चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अरे पर क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई। मृणाल कितने वक्त बाद आया था, मुझे भी उससे ढेर सारी बातें करनी थी, उसके और धृति के साथ मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करना था, पर तुम मुझे उठाकर रूम में ले आए, मुझे बात भी नहीं करने दी। माधुरी के नाराजगी भरे चेहरे पर उदासी व मायूसी के भाव उभर आए, पर खफा वो अब भी थी उससे। उसकी यह शिकायत सुनकर कबीर के चेहरे के भाव कुछ बदले और वो प्यार भरे नरम लहजे में उसे समझाने लगा। मेरी जान, तो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ही तो किया था, सुबह से तुमने एक मिनट भी आराम नहीं किया है, कभी धृति से बातों में लगी थी तो कभी आकृति के साथ खेल रही थी, कुश और अक्षु के साथ खेलने में तो तुम्हें ये तक ध्यान नहीं रह गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो और थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है तुम्हें, बैक में दर्द होने लगा था तुम्हारे, पर तुम्हें अपनी परवाह ही नहीं है। बताओ, ऐसे में अगर तुम्हें मृणाल और भाभी के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने की इजाजत दे देता तो तुम अभी यहां बैठकर आराम कर रही होती। फिर मृणाल कहीं नहीं जा रहा अभी, बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें उसके साथ, तब आराम से जितना दिल करे उतनी बातें कर लेना उससे, अभी जरा अपना और हमारे बच्चे का ख्याल करो, मेरी ओर घूमो, मैं मालिश कर दूं तुम्हारे बैक की। बात उसकी सही थी और वो जो भी कर रहा था उसके और उनके बच्चे के लिए ही कर रहा था। ये जानकर माधुरी की नाराजगी कुछ कम हुई और वो चुपचाप उसकी ओर पीठ करके बैठ गई। कबीर हल्के हाथों से उसकी बैक की मसाज करने लगा। कबीर, कुछ देर बाद माधुरी ने कबीर को पुकारा। कबीर ने तुरंत ही निगाहें उसके चेहरे की ओर उठाई। माधुरी सर घुमाई टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी।
बच्चे के होने के बाद भी तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगे ना, इतनी ही परवाह करोगी ना मेरी। डिलीवरी के बाद एक लड़की में बहुत से बदलाव आते हैं, उनका असर तुम्हारे प्यार और हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ेगा ना। चेहरे पर परेशानी के भाव लिए वो उदास निगाहों से उसे देख रही थी। पहले तो कबीर चेहरे पर गंभीर भाव लिए धैर्य के साथ खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर हौले से मुस्कुरा दिया। कभी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हर बदलाव के साथ मैं इतने ही दिल से अपनाऊंगा तुम्हें। तुम बच्चे की बात कर रही हो, तुम जब बूढ़ी हो जाओगी ना तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए ऐसा ही रहेगा। मैं तुमसे इतनी ही मोहब्बत करूंगा और तुम्हारा इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, बस कहीं तुम बच्चे के होने के बाद उसके पीछे अपने इस बेचारे पति को मत भूल जाना। कबीर ने दयनीय चेहरा बनाया जिसे देखकर माधुरी मुस्कुरा उठा। उसने तपाक से जवाब दे दिया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मुझसे कहाँ संभलेगा बच्चा, तुम ही तो उसे संभालोगे। अच्छा, मतलब मैं बच्चा संभालूंगा, बस इसलिए याद रखोगी तुम मुझे, बस यही इम्पोर्टेंस है मेरी तुम्हारी लाइफ में। कबीर ने नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखा तो माधुरी ने झट से ऐतराज जताते हुए आगे कहा, अरे नहीं, तुम बच्चे के साथ साथ मुझे भी तो संभालोगे। बेचारा कबीर पहले तो आंखें फाड़े आश्चर्यचकित सा उसे देखता ही रह गया, फिर उसने खफा खफा निगाहों से उसे घूरते हुए मुंह बना लिया। बहुत सेल्फिश हो तुम। नहीं, सेल्फिश नहीं हूं मैं,
तुम मुझे और हमारे बच्चे को संभालोगे, तभी तो मैं तुम्हें संभालूंगी ना। माधुरी ने बड़ी ही चालाकी से बात का रुख मोड़ते हुए खुद को सही साबित करने की कोशिश की और पलटकर उसके सीने से लग गई। अपनी नाराजगी दिखाते हुए कबीर कुछ पल यूं ही बैठे उसे घूरता रहा, फिर उसने अफसोस से सर हिलाया और माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया। माधुरी के लबों पर मुस्कान उभर आई। उसने कबीर के सीने से सर बाहर निकालते हुए उसे देखा और उसकी नाराजगी से फूले गालों को बारी बारी से चूम लिया। अब भी नाराज हूं मैं, कबीर ने जानकर मुंह फुलाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी मना लेती हूं मैं तुम्हें, माधुरी ने चंचल मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए कहा और उसके लबों को जैसे ही अपने लबों से स्पर्श करके पीछे हटने लगी, कबीर ने फुर्ती से उसकी कमर पर अपनी बाह लकेटते हुए उसे खुद से सताया और गर्दन के पीछे हाथ लगाते हुए उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर उन्हें चूमने लगा। माधुरी की आंखें हैरत से फैल गईं, वहीं कबीर की आंखें शरारत से चमक उठीं और अपनी आईविंग करते हुए वो उसके कोमल अधरों संग शरारत करते हुए उसे तंग करने लगा।